हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। वेदांत को फिर से रूही के करीब देखकर पार्थ ने गुस्से में अपनी मुट्ठियां कस लीं। उसकी गर्दन की नसें गुस्से से तन चुकी थीं। उसने बहुत कंट्रोल करके वेदांत से कुछ नहीं कहा और थोड़ी देर बाद वेदांत जैसे ही कमरे से बाहर गया, वो तेज कदमों से रूही के पास गया और एक झटके से उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी पीठ से लगाते हुए बोला, तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम लड़कों से दूर रहा करो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। रूही ने हैरानी से आंखें बड़ी करते हुए कहा, वो कोई लड़के नहीं है, वो आपके भाई हैं और मैं भी उन्हें भैया ही बोल रही हूँ। आप उनसे कैसे जलन महसूस कर सकते हो मिस्टर अंकल, और कौन सा मेरे बॉयफ्रेंड हो जो जब देखो तब मुझे ऐसे डांटते रहते हो। पार्थ ने और भी मजबूती से उसकी बाजू पकड़ते हुए कहा, सुना नहीं तुमने वेदांत भैया ने क्या कहा, सब लोगों की नज़रों में तो हम पति पत्नी भी हैं, तुम कहाँ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात कर रही हो। और तुम्हें पता है ना, कमरे में मुझे अकेले रहना पसंद है और मुझे अपना बेड भी किसी से शेयर करना पसंद नहीं है, और इस कमरे में एक ही बेड है, तो तुम वेदांत भैया से ये बोलोगी कि तुम्हें दूसरा कमरा चाहिए। रूही ने आंखें छोटी करके कहा, मिस्टर अंकल तुम क्या चाहते हो कि हमारा भांडा फूट जाए, सबको पता चल जाए कि हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं हैं बल्कि किडनैपर और एक विक्टिम हैं। उसके बाद वेदांत भैया आपको बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे क्योंकि आपने मुझे प्यारी सी लड़की को किडनैप करके रखा था, और आप सोच लो कि आप चाहते हो सब लोग आपसे नफरत करें। आपकी मम्मी भी कितनी अच्छी हैं, वो भी आपसे बहुत नफरत करेंगी क्योंकि उन्हें मैं बहुत पसंद आ गई हूँ। उसकी बात सुनकर पार्थ ने जबड़े भींचते हुए कहा, फिर तो तुम्हारे लिए मुसीबत और ज़्यादा बढ़ने वाली है बटरफ्लाई, क्योंकि अगर तुम्हें इस कमरे में सोना है तो फिर तुम्हें सोफे पर सोना पड़ेगा, क्योंकि बेड पर तो मैं तुम्हें नहीं सोने दूंगा। रूही ने सोचकर सोफे की तरफ देखा और फिर स्माइल करते हुए बोली, मैं 5 फुट 2 इंच हूँ और मेरा वेट 47 है, मैं बहुत आराम से एडजस्ट हो जाऊंगी। सोफा कितना बड़ा है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है मिस्टर अंकल, अब छोड़ो मुझे, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है और मेरा पेट का दर्द भी पूरी तरीके से सही नहीं हुआ है। डॉक्टर ने दवाई दी थी, मुझे वो दोबारा लेनी है खाना खाकर, उसके बाद मैं सही होने वाली हूँ, तो अब मुझे रेस्ट करना है। वो दोनों एक दूसरे के इतने करीब थे कि रूही के बार बार पलकें झपकने पर उसकी पलकें पार्थ को अपने गालों पर भी महसूस हो रही थीं, जो उसे अनकंफर्टेबल कर रही थीं। इसलिए उसने एक झटके से रूही को खुद से अलग करते हुए कहा, ठीक है, पर कोई होशियारी नहीं, गलती से भी यहाँ से भागने की कोशिश मत करना, मैं तुम्हारे दोनों पैर काट डालूंगा। रूही ने आंखों को गोल गोल घुमाया और फिर झूठी हंसी हंसते हुए बोली, जी जी मिस्टर अंकल, मैं सब कुछ समझ गई, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, डोंट वरी। उसके इतना बोलते ही रूम में फिर से सर्वेंट आ गए थे, जिनके पास रूही के लिए कपड़े थे। उन्होंने करीब 5 मिनट में ही सारा वार्डरोब सेट कर दिया था। उनके जाते ही पार्थ फ्रेश होने चला गया और रूही ने भी अपने सीने पर हाथ रखकर एक चैन की सांस ली और फिर अपने मन में सोचा, क्या मैं यहाँ से अपनी मम्मी से रोज़ बात कर सकती हूँ। दूसरी तरफ माधवी ने जल्दबाजी में जिग्नेश और रितेश दोनों को घर बुलाया था ताकि उनसे डिस्कस कर सके कि अब रूही को कैसे कंट्रोल करना है, क्योंकि यहाँ तो इतने सारे लोग हैं उसे बचाने के लिए, उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे और पार्थ को भी वो ज़्यादा देर तक मैनिपुलेट करके नहीं रख पाएंगे। जब पार्थ को पता चलेगा कि बाकी फैमिली इतनी बुरी नहीं है जितनी उसे बताई गई है, तो वो बहुत जल्द उनका साथ छोड़ देगा, जो वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे। गार्डन एरिया में भी अब हल्का अंधेरा छाने लगा था और वहाँ लाइट्स जलने लगी थीं, जिनमें अब विहा का खूबसूरत चेहरा चमकता हुआ नजर आ रहा था। गूगल और सनशाइन दोनों खेलकर बहुत ज़्यादा थक चुके थे, इसलिए वो भी सोने के लिए चले गए। वहाँ बस विहा अकेली बैठी थी। वेदांत धीमे कदमों से उसके पास गया, उसके हाथ में एक छोटा सा प्लास्टिक का फ्लावर था। विहा को वो चीज़ें पसंद नहीं हैं जो जल्दी से मुरझा जाती हैं या फिर ख़राब हो जाती हैं, इसलिए वेदांत उसके लिए प्लास्टिक का फ्लावर लेकर आया था ताकि वो हमेशा वैसा का वैसा रहे। वेदांत उसके सामने वहीं घुटनों के बल बैठ गया और फिर उसकी तरफ फ्लावर करते हुए बोला, टोमेटो देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ, तुम्हें पता है इस पर टोमेटो भी लिखा हुआ है, हैप्पी रोज डे टोमेटो। कब तक ऐसे चुप चुप रहोगी, वो रूही है ना, वो बहुत अच्छी है, तुम एक बार उससे बात करना जब तुम्हारा बात करने का मन करे। और अभी चलो बच्चा, यहाँ बहुत ठंड हो गई है और इस घास में भी रात को मच्छर हो जाते हैं, तुम्हारे पैरों पर काट लेंगे और फिर बहुत दर्द होगा। वेदांत बेहद प्यार से विहा के बाल सहलाते हुए उससे बातें कर रहा था, तो वहीं विहा की नज़रें अब उसके हाथ में रखे छोटे से फ्लावर पर थीं। उसने हाथ बढ़ाकर वो फ्लावर ले लिया। उसका ऐसा करते ही वेदांत का चेहरा खुशी से खिल उठा। विहा ने धीरे से उस फ्लावर को अपने हाथ से छूते हुए कहा, आई मिस यू। विहा ने बेहद धीमी आवाज़ में ये कहा था। वेदांत उसकी वो कमज़ोर सी आवाज़ सुनकर जल्दी से उसके करीब आ जाता है और फिर उसे अपनी बाहों में भरते हुए बोलता है, आई एम सॉरी बेटा, आज मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा तो मैं हमेशा अपनी टोमेटो के पास ही रहता हूँ। तुम कहो तो मैं ऑफिस से परमानेंट छुट्टी ले लेता हूँ। जो मैं 3-4 घंटे का काम करता हूँ वो भी नहीं करूँगा, हमेशा तुम्हारी आंखों के सामने रहूँगा, फिर सब कुछ ठीक रहेगा ना। बेहा ने गुस्से में वेदांत को खुद से अलग करते हुए कहा, नहीं मेरे पास नहीं आना है, मुझे फिर से कोई तकलीफ नहीं चाहिए, अब मुझे नींद आ रही है। इतना बोलकर बेहा उठी और फिर धीमे कदमों से गार्डन से बाहर जाने लगी। उसके ऐसा करते ही वेदांत की आंखों में पानी भर आया। उसके साथ कुछ दिनों से बस ऐसा ही होता आ रहा था। बेहा उसे अपनी फीलिंग जरूर बता देती पर उसके प्यार को एक्सेप्ट नहीं करती थी। बेहा को अब सब कुछ ही दिखावा लगने लगा था। उसे धीरे धीरे पैसों की इम्पोर्टेंस समझ आ रही थी। इंसान के इमोशन और फीलिंग से ज्यादा इम्पोर्टेंट पैसा होता है, अब वो ऐसा सोचने लगी थी। इसलिए वो अपनी इमोशन और फीलिंग अब किसी पर वेस्ट नहीं करने वाली थी। वेदांत को अब उसके पैरों की चिंता हो रही थी। वहां पर पत्थर और कांटे हो सकते थे जिससे विहा के पैर में चोट लग सकती थी, इसलिए उसने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और फिर तेज कदमों से चलता हुआ विहा के पास गया। अगले ही पल उसने उसे अपनी बाहों में उठाते हुए कहा, सॉरी टोमेटो, तुम्हारी परमिशन के बिना तुम्हें ऐसे छू रहा हूं, लेकिन तुम्हारे पैरों में पत्थर लग जाएंगे और गार्डन की घास भी इतनी ज्यादा सॉफ्ट नहीं है, ये भी चिप सकती है। आगे से यहां घूमने आओ तब स्लीपर्स पहनकर रखना। वेदांत की भारी आवाज सुनकर विहा ने पलके उठाकर उसके चेहरे को देखा। वेदांत के चेहरे को देखकर लग रहा था जैसे उसका रोने का मन कर रहा हो, लेकिन वो अपने आंसुओं को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। पर विहा को अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने अपनी पलकें फिर से झुका ली और फिर से उस फ्लावर को देखने लगी जो उसे फिलहाल बहुत क्यूट लग रहा था। थोड़ी देर बाद वेदांत विहा के कमरे में पहुंच चुका था। उसने विहा को बेड पर बैठाया और फिर उसके पास बैठकर एक नजर उसके पैरों को देखा कि कहीं उसे चोट तो नहीं लगी है, पर सब कुछ ठीक था। ये देखकर वेदांत उठा और फिर साइड टेबल से विहा की दवाइयां लाते हुए बोला, चलो शाम की दवाई का वक्त हो गया है, ये खा लो, उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट कर लेना, फिर मैं सिर्फ तुम्हें डिनर करवाने आऊंगा, उससे पहले तुम्हें आकर डिस्टर्ब नहीं करूंगा। इतना बोलकर वेदांत ने विहा को दवाई खिलाई। विहा ने भी बिना नखरा किए दवाई खा ली थी। उसके बाद वेदांत उसे बेड पर लिटाकर कम्फर्टर ओढ़ाते हुए कमरे से बाहर चला गया।
कमरे की लाइट अभी भी ऑन थी और विहा बेड पर लेटी हुई उस फ्लावर को घुमा घुमा कर देख रही थी। इतनी देर से उसे वो टमेटो नाम नहीं दिखा था जिसके बारे में वेदांत बता रहा था। अब उसे गुस्सा आ रहा था, आखिर ऐसे भी कहाँ लिखा था टमेटो जो उसे दिखाई ही नहीं दे रहा था।